ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के अब तक के अध्याय में हम सभी ने देखा कि किस प्रकार अर्जुन की एक मनोदशा थी, कैसे कैसे सवाल उसके मन के अंदर उत्पन्न हो रहे थे और भगवान एक एक सवाल का जवाब उन्हें दे रहे थे। साथ ही उसके मन के अंदर जो अज्ञान था उस अज्ञान को भी दूर कर रहे थे। अज्ञान जो था परमात्मा का स्वरूप के विषय में, तो वो स्वरूप भी कैसे स्पष्ट किया। परमात्मा ने इस संसार की 81 श्रेणियों के अंदर जो उत्कृष्टता थी उसकी तुलना अपनी विशेषताओं से किया, परंतु फिर भी वो संपूर्ण रूप से परमात्मा की असीम विभूति को स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे। और इसीलिए जब इतनी सुंदर बातें अर्जुन ने सुनी तब उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि क्या वो स्वरूप मेरे द्वारा देखे जाना संभव है। और तब परमात्मा ने उन्हें दिव्य चक्षु प्रदान किए और वो दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कराया। जिस दिव्य स्वरूप को देख करके उनके मन की कई प्रकार की भ्रांतियां समाप्त हो गई, मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा भावना और बढ़ गई, और उसके बाद जो उनके प्रश्न रहे वो प्रश्न भी बदल गए। अब जो प्रश्न कर रहा है वो जिज्ञासा वाले प्रश्न है, जीवन के अंदर उन्नति को प्राप्त करने के लिए प्रश्न है, पुरुषार्थ में सहजता कैसे ले आए उसके प्रश्न है। और साथ ही साथ भगवान से भी क्षमा याचना मांगी कि हे प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर देना। और उसके बाद जो प्रश्न हुए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय में, प्रकृति के तीन गुणों को किस तरह से मनुष्य जीवन में प्रभावित होते हैं, सात्विक राजसिक तामसिक। सात्विक लोगों की जीवन शैली कैसी होती है, राजसिक लोगों की जीवन शैली कैसी होती है और तामसिक लोगों की जीवन शैली कैसे होती है, इन सब बातों को स्पष्ट करके पुरुषोत्तम योग को भी वर्णन किया कि कैसे ये संसार एक उल्टा वृक्ष है जिसका बीज स्वयं परमात्मा ऊपर है और सारा वृक्ष नीचे फैला हुआ है, और ये शाखाओं में भी कैसे प्रकृति के तीन गुण प्रभावित करते हैं। और फिर जब एकदम जड़जड़ीभूत अवस्था हो जाती है इस कल्प वृक्ष की, तो परमात्मा उस आदि पुरुष के रथ का आधार लेकर के वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा इसकी जड़ों को काट करके पुनः एक नए वृक्ष का प्रारंभ करते हैं। इस तरह गुह्य गोपनीय ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया। और अब 17वां-18वां अध्याय जो है वो सारी गीता का निचोड़ है, सार है, कि जब भगवान अर्जुन को वो आईना दे देते हैं। या यूं कहे कि हम सभी आत्माओं को वो आईना मिल जाता है कि हमारे अंदर कौन सी प्रकृति के गुणों का प्रभाव है, सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। प्रकृति के प्रभाव से चलने वालों के बुद्धि कैसी है, उनके जीवन की धारणा शक्ति कैसी है, उनके जीवन के कर्म कैसे हैं, उनके जीवन में सुख कैसा होता है, यज्ञ कैसा करते हैं, दान कैसा करते हैं, इन सब बातों को लेकर के स्पष्ट किया गया है। इसलिए कहा कि ये एक प्रकार का आईना है कि जो आईना हम लोगों को भी स्पष्टीकरण कर देता है कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, किस तरह की जीवन शैली को अपनाना है। तो श्रद्धा के विभाग 17वें अध्याय के अंदर इसमें आहार, यज्ञ, कर्म, तप, दान के प्रकार बताए हैं तथा प्रकृति के तीनों गुणों का मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया है। और इस तरह अर्जुन का सवाल भगवान से कि जो मनुष्य ज्ञान रहित है, जिसमें ज्ञान नहीं है, और श्रद्धा युक्त होकर यज्ञ कर्म करता है, श्रद्धा भावना जरूर है लेकिन ज्ञान नहीं है, क्या उनकी निष्ठा सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। तो भगवान कहते कि हे अर्जुन, सभी मनुष्य की श्रद्धा उनके स्वभाव संस्कार के अनुरूप ही होती है। जैसे जिसका स्वभाव संस्कार है उसी अनुसार उसकी श्रद्धा भी होती है। ये नहीं कि भाई किसकी ज्ञान नहीं है लेकिन श्रद्धा अधिक है, नहीं, जितना जिसमें ज्ञान है उसी अनुसार उसकी श्रद्धा होती है। जैसी जिसकी श्रद्धा वैसा ही उसका स्वरूप होता है। सात्विक प्रकृति के लोग जैसे पहले भी बताया देवताओं को पूजते हैं, राजसिक लोग यक्ष राक्षसों को पूजते हैं और तामसिक लोग प्रेत और भूतों को पूजते हैं। जैसी जिसमें श्रद्धा होगी वैसा ही पूजन करेंगे। ये मिसाल एक भगवान ने दिया, भाई उसकी श्रद्धा देवताओं में है ही नहीं, तामसिक प्रकृति के लोगों की, उनकी श्रद्धा ही भूत प्रेतों में है कि वो मेरा काम सही कर देंगे। भगवान मेरा काम सही करेंगे, देवताएं मेरे काम सही करेंगे, ये श्रद्धा ही नहीं है उनकी। उनकी श्रद्धा क्या है कि ये भूत प्रेत ही मेरा काम ठीक कर लेंगे, इसीलिए वो उनकी आराधना ही करते हैं, वो देवताओं की आराधना करते ही नहीं है। तो जैसा जिसका स्वरूप वैसी उसकी श्रद्धा है ना, जितना जिसमें ज्ञान है उसी अनुसार उसकी श्रद्धा होगी। फिर भगवान कहते ज्ञान रहित आराधना में अज्ञान, अहंकार, कामना और राग समाया होता है। वे सर्व को कष्ट पहुंचाने वाले अविवेकी होते हैं, उन्हें आसुरी निश्चय वाले ही जानो, जो दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, तो वो आसुरी निश्चय वाले ही जानो। वे अपनी अपनी प्रकृति अनुसार ही आहार स्वीकार करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, अब उनका भेद सुनो। तो सबसे पहला है आहार, कि सात्विक प्रकृति के लोगों का आहार कैसा होता है, राजसिक प्रकृति के लोगों का आहार कैसा होता है। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, तो मन के अंदर कितनी श्रद्धा है आहार से पता चलती है। तो सात्विक मनुष्य का आहार कैसा होता है, आयु, बुद्धि, बल, स्वास्थ्य, सुख, सात्विकता तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। राजसिक मनुष्य का आहार कैसा होता है, तीखा, खट्टा, खारा, बहुत गर्म, चटपटे, रूखे, दाहकारक, ऐसे होते हैं। और ऐसे आहार दुख, शोक तथा रोग को उत्पन्न करने वाले होते हैं। और जो तामसिक मनुष्य का भोजन है वो कैसा होता है, नीरस, दुर्गंधित, बासी, जूठा व अपवित्र होता है। ये भोजन है तामसिक लोगों का। इसलिए कहा अब आईना मिल रहा है कि हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम किस प्रकृति में आते हैं। उस हिसाब से हमें ये अभी देखना है कि हमें कहां जाने का प्रयत्न करना है, पुरुषार्थ किस दिशा की ओर करना है ना। मुझे याद आता है कि ब्रह्मा बाबा हमेशा जब भी साकार में थे तो इतने बच्चे बाबा के सामने आते थे, और आप लोग ने भी ये 3 दिन में अनुभव किया होगा कि कभी आपको दोपहर की चीज रात को सर्व नहीं की गई, या रात की चीज सुबह नाश्ते में चाहे दूसरा कुछ बना करके उसी का ही मेकअप करके बना करके सर्व किया जाए, नहीं किया गया। बाबा का मानना था ये, और इसीलिए हमेशा बाबा बच्चों के लिए फ्रेश बनवाते थे। जो बचा हुआ होता था वो गायों को दे खिला देते थे, या माना उसी दिन समाप्त कर देना है, दूसरे दिन के लिए रखना नहीं है। क्योंकि रात भर जो भोजन रहता है उसमें इतने प्रकार के वाइब्रेशंस जाते हैं, और सुबह अगर उसको खिलाया जाए तो किस प्रकार की उसकी बुद्धि बन जाती है। इसीलिए बाबा यही कहते थे कि आध्यात्मिक उन्नति जहां करने की बात आती है वहां रात का भोजन कभी स्वीकार नहीं करना है। न खुद करते थे न किसी को करने देते थे, गायों को खिला देते थे। बाबा के पास में बहुत गायें होती थी, आज भी अपने पास बहुत गायें हैं, तो गायों को खिलाया जाता है लेकिन बच्चों को कभी नहीं खिलाया जाता है। तो रात भर का पड़ा हुआ भोजन ये तामसिक बाबा कहते थे। पहली बात बाबा यही कहते थे कि बच्चे तुम्हारा योग इतना एक्यूरेट होना चाहिए जो ज्यादा बनना ही नहीं चाहिए, जो फेंकना पड़े उसको या किसी को ढूंढना पड़े खिलाने के लिए, है ना, बनाओ ही इतना एक्यूरेट जो पूरा हो जाए। वो तभी होगा जब ईश्वर के साथ हमारा योग होगा तो एक्यूरेट बनेगा, है ना। लेकिन अगर बुद्धि ही अगर ठीक नहीं होगी तो एक्स्ट्रा बन जाएगा, माप का हिसाब नहीं रहेगा, ज्यादा बना देंगे, फिर फेंकना पड़ता है, फिर ढूंढना पड़ता है। बाबा कहते थे ये तामसिक भोजन है, और इसीलिए आपने 3 दिन में अनुभव किया होगा कि चाहे 1000 लोग थे एक्यूरेट बनता था, जो बचता था वो सर्वेंट्स को उसी दिन रात तक पूरा कर देना, उसको दूसरे दिन तक आगे चलाना, ये बाबा का प्रिंसिपल ही नहीं था। बासी खाने से बुद्धि बासी हो जाती है, बुद्धि की प्रगति क्रिएटिविटी नष्ट हो जाती है, ये बाबा का मानना था। तो ये गीता से बाबा ने ये बात को लिया था। ये बाद में हम लोगों को पता चला कि कैसे भगवान वाच जो थे भगवान ने ये बात सुनाई थी, इसीलिए ब्रह्मा बाबा के जीवन के आचरण में उन बातों को हमने देखा कि सात्विक भोजन न तीखा न खट्टा, ये आप लोग ने भी अनुभव किया होगा कि कोई ऐसा चटपटा वाला खाना, तीखा एकदम मिर्च मसाला वाला हो, ऐसा नहीं होता है यहाँ खाना, क्योंकि ये सात्विक भोजन नहीं है। और आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए जितना सात्विक भोजन होगा उतनी बुद्धि की तेजस्विता बढ़ती जाती है। उसके बाद दूसरा है तीन प्रकार के यज्ञ कर्म, तो जिसमें फल की इच्छा नहीं और जो विधि पूर्वक कर्तव्य समझकर निश्चयात्मक बुद्धि से होता है वे यज्ञ सात्विक है। जो भौतिक लाभ के लिए या दंभ से होता है ऐसा यज्ञ राजसी है, और जिसमें विधि ही नहीं है, लोक कल्याण की भावना नहीं है, त्याग नहीं है, श्रद्धा नहीं है, ऐसा यज्ञ तामसी है। तो ये तीन प्रकार के यज्ञ कर्म स्पष्ट किए। उसके बाद तपस्या तीन प्रकार की, के देव, द्विज, गुरु और ज्ञानी जनों की आराधना, बाह्य शुद्धि, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा इत्यादि शरीर संबंधी तपस्या है। ये शरीर के संबंध में तपस्या है, आराधना करना, बाह्य शुद्धि को अपनाना, अर्थात जब भी शौच जाते हैं तो स्नान कर लेना, बाह्य शुद्धि, सरलता हो जीवन के अंदर, ब्रह्मचर्य व्रत हो और अहिंसा हो, ये शरीर संबंधित तपस्या है। जो वाक्य सच्चे, प्रिय, हितकर, ज्ञान युक्त, मधुर है, ऐसे वाक्य वाणी का तप है, ये वाणी की तपस्या है। और मन की प्रसन्नता, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम और अंतकरण की शुद्धि ही मन की तपस्या है। तो मन, वचन और शरीर तीनों की तपस्या कैसी होती है इसको स्पष्ट किया। इसमें भी सात्विक तपस्या किसको कहते, राजसिक किसको कहते और तामसिक किसको कहते इसको स्पष्ट करते हैं कि ये तीनों तप में जब भौतिक फल की इच्छा नहीं होती है लेकिन केवल ईश्वर अर्पण भाव परम श्रद्धा से संपन्न है वह सात्विक तपस्या है। परंतु जब तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, ऐसी तपस्या अनिश्चित, क्षणिक और राजसी है। जहां इच्छाएं हैं, सम्मान सत्कार प्राप्त करने की इच्छा रहती है और जो तपस्या करते वो राजसी तपस्या है। और जो तप कष्ट उठाकर, दुराग्रह पूर्वक और दूसरों के नाश के लिए होता है वह तप तामसी है, वह तामसी तपस्या है। जहां दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए कई लोग कोई व्रत करते हैं या इस तरह का तपस्या करते हैं जिसमें कल्याण की भावना नहीं है, तो वह तामसी तपस्या है। और इस प्रकार दान, तीन प्रकार के दान है, इस प्रकार दान देना कर्तव्य है। परंतु जो दान उचित समय और स्थान देखकर योग्य पात्र को दिया जाता है, जिसमें प्रतिउपकार की अपेक्षा नहीं होती है, वह दान सात्विक माना जाता है। और जो दान कलेश पूर्वक तथा प्रतिउपकार के उद्देश्य से और फल की कामना रखकर दिया जाता है, कुछ प्राप्त करने की कामना के साथ दिया जाता है, वह दान राजसी है, और जो दान बिना सत्कार किए, सामने वाले का सत्कार भी नहीं, तिरस्कार पूर्वक अपवित्र स्थान अनुचित समय पर कुपात्रों के लिए दिया जाता है, वह दान भी तामसी है। तीनों प्रकार के बाबा हमेशा दान के लिए भी यही कहता था कि दान जो करे ये हाथ को पता न चले। गुप्त दान महापुण्य कहा जाता है, और इसीलिए आपने यहां देखा होगा, अनेक आश्रमों में आप सभी गए होंगे, यहां पर आपको कहीं पर भी वो दान पेटी देखने को नहीं मिली, क्योंकि बाबा का ये मानना था, ये बाबा के जीवन का सिद्धांत था कि मांगने से मरना भला। हमारा किसी के सामने हाथ फैलाना कि यहां ये दान करो, इतनी मेंबरशिप करो, आप ये करो, नहीं। बाबा कहते थे बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चों की पहले सेवा करनी चाहिए। बाबा ने हमेशा हम बच्चों को यही सिखाया कि किसी की सेवा लेने का अधिकार, दान लेने का अधिकार, सेवा लेना माना दान लेने का अधिकार तभी होता है जब पहले आप उनकी सेवा करो। जब तक आप उनकी सेवा नहीं करेंगे और वो दान लिया तो वो एक बोझ होगा, इसलिए ऐसा बोझ स्वयं के ऊपर नहीं चढ़ाना है। तभी कहा कि पहले सेवा करो, पीछे आप सेवा ले सकते हैं, तब तक सेवा लेने का अधिकार नहीं है। तब तक वो दान लेना माना एक बोझ अपने ऊपर। इसीलिए आपने तीन दिन में ना आपको सेंटर से किसी ने कहा होगा, ना आपको यहां किसी ने कोई लेक्चर में कोई इशारा भी दिया हो कि भाई आप किसी ना किसी रूप से भाई इतना दान करो, कभी नहीं। ये बाबा का सिद्धांत ही नहीं था, क्योंकि गीता में ये बात कही हुई है कि सात्विक दान भी किसको कहा जाता है। और इसीलिए देखा गया है कि आज ये सारी दुनिया के अंदर अगर लार्जेस्ट लेडीज मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, उसका कारण यही है कि बाबा के जो सिद्धांतों को पालन किया है, अभी तक भी वो सिद्धांत है। बाबा के जाने के बाद भी भले आज 44 इयर्स होने को आए, लेकिन 44 इयर्स से भी बाबा के जो बनाए हुए सिद्धांत है, सारी दिनचर्या जो है सुबह अमृत वेले से रात्रि तक की, वो पूरी दिनचर्या जो सात्विक रूप से बाबा ने बना के दी है, उसी रूप से चलती है। और इसीलिए आज अभी तक भी इसकी इतनी प्रगति देख रहे हैं सारे संसार के अंदर। तो ये बाबा ने जो बातें सिखाई है, प्रैक्टिकल यही कहो कि बाबा गीता का अध्ययन शुरू में इतना करते थे, और वो गीता को उन्होंने जीवन में उतारा था, और इसीलिए आज इतने भाई बहनों के लिए बाबा आदर्श बन गए, क्योंकि बाबा का जीवन ही ऐसा था कि बाबा ने जो बातें की प्रैक्टिकल खुद करके फिर सिखाई बच्चों को। तो ये बाबा के जीवन की धारणाएं थी। और फिर 17वें अध्याय के अंत में ओम तत्सत का अर्थ बाबा भगवान बताते हैं कि ओम माना अहम आत्मा, तत् माना समस्त तत्व, और सत माना उन समस्त तत्व में भी सत्य भाव, श्रेष्ठ भाव, दृढ़ भाव को धारण करना है। यानी मैं आत्मा समस्त तत्वों के सहित स्वयं में सत्य भाव, श्रेष्ठ भाव और दृढ़ता का भाव मैं आचरण में लाती हूं। यह है ओम तत् सत। और फिर 18वें अध्याय में संन्यास की भी सिद्धि बताई है।